सुरासुरमनुषदन्दबन्दिदम् घोयिघायिकम् विमलम् प्रणमामि बद्धमानम् तीर्थम् धम्मस्य कर्तारम्। रोचन सार परमागम का ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, जिसमें सामान्य गेय की चर्चा चल रही है। जितनी भी जगत में वस्तुएं हैं वो सभी गेय हैं। गेय है माने जानने में आने वाली हैं। उनका ये गेय नाम ज्ञान का विषय होने के कारण ही पड़ा है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, किसी का मामा नाम भांजे की अपेक्षा पड़ा है, पिता नाम पुत्र की अपेक्षा पड़ा है, ऐसे समस्त पदार्थों का जो गेय नाम पड़ा वो ज्ञान की अपेक्षा पड़ा है। प्रमेय नाम पड़ा वो प्रमाण की अपेक्षा पड़ा है। कहीं भी किसी वस्तु का नाम में नेय शब्द नहीं है, क्योंकि नेयों का विषय है इसलिए वस्तु वो नेय। ऐसा सुना कभी? तो प्रमेय तो सुना है, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला। क्यों? ये बड़े बड़े जो अपने ग्रंथ हैं न्याय के, उनके भी ऐसे नाम हैं। ऐसे एक गे तत्व प्रज्ञापन एक ग्रंथ का नहीं सही तो एक अधिकार का नाम है। तो गे का वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी यहां चर्चा की अपन ने अभी, दीर्घार्थक न्याय और पर्यायार्थक न्याय के संदर्भ में थोड़ी। अब आचार्य कहते हैं कि नहीं, अकेले इतना ही नहीं है कि द्रव्यार्थक से वस्तु ऐसी है और पर्यार्थक से ऐसी है। इसमें सात भंग होते हैं। 115वीं गाथा, पूजा तक की चर्चा हो गई थी ना, 115वीं गाथा इसमें सप्त भंग की चर्चा है। लगभग 236 पृष्ठ पर सात भंग की चर्चा टीका के सेकंड पैरे को मैं पढ़ता हूं, जो 236 पेज के सबसे नीचे की पंक्ति। द्रव्य का कथन करने में जो स्वरूप से सत है, पर रूप से असत है, जिसका स्वरूप और पर रूप से युगपत कथन अशक्य है, जो स्वरूप से और पर रूप से क्रमशः सत और असत है, जो स्वरूप से और स्वरूप पर रूप से युगपत सत और अवक्तव्य है, जो पर रूप से और स्वरूप पर रूप से युगपत असत और अवक्तव्य है, जो स्वरूप पर रूप और स्वरूप पर रूप से युगपत सत असत और अवक्तव्य है, ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विविक्षित अवक्षता के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करने पर त्यातकार रूपी अभोग मंत्र के पद द्वारा एवकार में रहने वाला समस्त विश्व विरोध विश्व के मोह को दूर करती है। क्या कहते हैं कि सप्तभंगी की जो रचना के बता रहे हैं आपको, तो वो ये कोई कथन की अकेली शैली नहीं है। वस्तु ऐसी विविधता वस्तु में ही पड़ी है। दूसरी बात देखो, अंतिम पंक्ति पे पहले अपन व्याख्या करते हैं, क्या लिखा है कि एवकार से विष पैदा होता है। ठीक है, देखो अंतिम, एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। कौन? सादवाद पद्धति सप्तभंगी। तो क्या कहते हैं, एवकार में एक जहर रहता है। नए चक्र में आपने पढ़ा कुछ जहरीले शब्द हैं, एव सर्वथा है? तो कहते हैं कि ये सप्तभंगी जिनके यहां नहीं है उनके यहां वो एव जहरीला शब्द है। एव माने ऐसा ही है, एव माने ही। जब किसी बात को एकांत से कहते हैं तो उसमें हम ही लगा देते हैं कि ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु नित्य ही है, तो कहते हैं ही है तो इसने अनित्य नहीं है, तो इसने अनित्यत्व धर्म का निषेध किया, इसलिए जहरीला है। क्या? कि वस्तु सर्वथा नित्य है तो इसने अनित्यत्व धर्म का निषेध किया, इसलिए यह शब्द जहरीला है। वही कहते हैं। लेकिन लोक में जो जहर होता है उसको भी यदि सावधानी से प्रयोग करें तो वो औषधि बन जाता है। जितनी औषधियां बनी हैं उसमें आधी से ज्यादा जहर से बनती हैं, क्योंकि बीमारी से जो अंदर में एक जहर पैदा हो गया है उस जहर को मारने के लिए दूसरा जहर ही चाहिए, लेकिन वो शोधित होना चाहिए। तो एवकार यद्यपि जहरीला है पर सप्तभंगी के द्वारा संशोधित होने से वो औषधि बन जाता है। देखो पीछे लिखा है, देखो पढ़ो, त्यातकार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विषय मोह को दूर करती है। वो एक महामंत्र है, पहले उस जमाने में, अब आजकल तो कोई को सांप काट जाए तो अस्पताल ले जाते हैं और दवाइयां ही की जाती हैं। पुराने जमाने में तो मंत्रवादी होते थे और मंत्र से उसे झाड़ते थे, तो उन्होंने मंत्र शब्द का प्रयोग किया कि वो एवकार में जो जहर है उस जहर को कम करने के लिए हमारे पास सप्तभंगी रूपी मंत्र है। तो ये सप्तभंगी रूपी मंत्र उस एवकार के जहर को सर्वथा दूर कर देते हैं। अब देखो मैं बताऊं थोड़ा आपको कि एवकार जहर कब है, जब अपेक्षा नहीं लगी हो तो एवकार जहर होता है। जैसे हमने कहा वस्तु द्रव्यार्थिक नय से नित्य ही है तो ये जहरीला नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से ऐसा हमने लगा, ये लगा है तो वो जहर नहीं है। पर का वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है तो ये भी अपेक्षा लग गई, चाहे अपन नए लगा दो चाहे जो अपेक्षा अपन ने लगाई वो बता दो। कैसे, जैसे अपन ने कहना कि ये मामा की अपेक्षा भांजा ही है, इसमें तो अपन ने कोई नए नहीं लगाया लेकिन अपेक्षा बता दी ना, मामा की अपेक्षा तो नए लग गया समझ लो, नए बता दिया तो अपेक्षा लग गई। अपेक्षा कई तरीके से लगाई जाती है, वो स्थिति स्पष्ट कर दो तो भी अपेक्षा लग गई, नए लगा दो तो भी अपेक्षा लग गई, ख्याल में है ना। तो कहते जहां अपेक्षा लगा दी जाती है तो वहां जो ही शब्द है उसका जहर खत्म हो जाता है। अब कोई ये कहे कि ही शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करें, सर्वथा शब्द का प्रयोग ही नहीं करें क्योंकि ये जहर है और कभी हमारी अपेक्षा ढंग से नहीं लग पाई तो हम मर जाएंगे, तो कहते उसका लगाने का भी अर्थ है, कोई कार्य है, वो उस कथन में दृढ़ता प्रदान करती है, तो दृढ़ता नहीं रहेगी, धुलमुलपना रहेगा, तो उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अपने पिता का पुत्र ही है, ऐसा नहीं कि पिता का पुत्र भी है और पिता का भांजा भी है, यानी उसी अपेक्षा से, और पिता की अपेक्षा पुत्र के अलावा कुछ नहीं है, ख्याल में आए ना। ये जो अन्न का निषेध करने के लिए ही लगाना जरूरी है, अपेक्षा लग जाए तो उस अपेक्षा के अलावा अन्य अपेक्षाओं का निषेध करने के लिए, अन्य का निषेध करने के लिए वो ही का लगाना बहुत जरूरी होता है। देखो मैंने उसमें ऐसा लिखा नए चक्र में कि ही सर्वथा एव ये शब्द जहां अकेले लगते हैं अपेक्षा के साथ तो वहां खतरनाक नहीं है, जब दो मिलके लग जाएं तो खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन क्या कि सर्वथा ही ऐसा है, ऐसा कहना, सर्वथा भी लगा दें और फिर ही भी लगा दें, क्यों? एक और आप समझ लो कि एक नए सप्तभंगी होती है और एक प्रमाण सप्तभंगी होती है, तो नए सप्तभंगी में ही लगता है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगता है, चाहे कोई चाहे जहां नहीं लगा देना। जब कथनचित अथवा स्यात पद लगाया जाता है तो वहां भी लगाना पड़ता है। कथनचित ये कोई अपेक्षा नहीं है, स्याद ये कोई अपेक्षा नहीं है, किसी अपेक्षा कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, किसी अपेक्षा, आप तो वह अपेक्षा स्पष्ट कर दो किस अपेक्षा है, क्यों? मैं आपसे बोल दूं ना, किसी अपेक्षा में आ भी सकता हूं और किसी अपेक्षा नहीं भी आऊंगा, तो आप कहेंगे किसी किसी से काम नहीं चलेगा, आप साफ साफ बता दो कि साफ साफ ऐसी बात है कि तबीयत ठीक रही तो आऊंगा और तबीयत ठीक नहीं रही तो नहीं आऊंगा। ये समझ में आ गया है, ये तो हम मानते हैं, तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैसे आएंगे। वो किसी किसी में तो वो छुपी हुई है ना परिस्थिति, तो जब किसी लगाते हैं किसी अपेक्षा तो वहां भी लगाना पड़ता है। इसे प्रमाण सप्तभंगी बोलते हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, मैंने किसी अपेक्षा है भी किसी अपेक्षा नहीं भी है, ऐसा समझ गए ना आपके में। अगर कथनचित शब्द लगाते हैं, स्याद शब्द लगाते हैं तो भी लगाते हैं, और फिर लगाते हैं अपन द्रव्यार्थिक नये से नित्य भी है, ऐसा गलत हो जाएगा। द्रव्यार्थिक नये से तो फिर नित्य ही है, ऐसा बोले मैंने एक किसी का मामा है, एक किसी का भांजा है, एक किसी का पिता है तो ठीक है ना, लेकिन ये इसका पिता, ये किसी का पिता भी है ये ठीक है, लेकिन ये इसका पिता भी है ये ठीक नहीं है। वो अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाएगी तो ही लग जाएगी। तो यदि आपने ही और भी लगाने में सावधानी नहीं रखी तो खतरा भी पैदा हो सकता है, ही की जगह भी लग गया और भी की जगह ही लग गया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कहां ही लगाना और कहां भी लगाना, तो प्रमाण शब्दभंगी में लगता है भी और नए शब्दभंगी में लगता है देखो, अरे एव लगता है ना जिसमें, वो नए शब्दभंगी है। तो अपेक्षा बता दी ना, तो अपन ने किसी बात को दृढ़ता प्रदान की तो दृढ़ता प्रदान कर दिया, तो फिर वो अपेक्षा बताना भी बहुत जरूरी है। तो किसी अपेक्षा ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो अब एक बात ये कहते हैं कि जितनी भी अपेक्षाएं इस जगत में लग रही है वे उतने धर्म वस्तु में हैं। ये तो अभी सात नए, पहले दो नए बताए थे, निश्चय व्यवहार दिव्यार्थिक पर्यार्थिक, फिर अब ये सात भंग बता दिए, अभी 47 नए बताएंगे। तो कहते नए तो अनंत होते हैं, जितने धर्म उतने अनंत, जितने गुण उतने नए। तो वो जो बात कही जा रही है वो वस्तु में वो बात होनी चाहिए। अब देखिए इस शब्दभंगी का स्वरूप समझाने के लिए बहुत सरल शब्दों में मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो है, जैसे यद्यपि मूल भंग सत और असत को मूल भंग माना जाता है ना, अस्ति और नास्ति को ये मूल भंग, अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसे बोलते हैं ना, ये मूल भंग। तो ये मूल भंग क्यों माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं कि ये जो और भी अपन बोलेंगे उसमें ये तो लगेंगे ही, जैसे नित्य है, अस्ति माने है, और फिर लगा नित्य है तो लगा ही है उसमें, अपन बोलते हैं कथनचित नित्यम, माने कथनचित नित्यम अस्ति, ऐसा ही अर्थ है ना उसका। तो ये कोई भी और भंग लगाएंगे उसमें है तो लगेगा ही ना, भिन्न है, अभिन्न है, भिन्ना भिन्न है, अवक्तव्य है। तो ये मूल भंग इसलिए है कि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं, ये तो अकेला लगता है लेकिन और कोई चीज अकेली नहीं लग सकती। स्याद अस्ति स्याद है, स्याद नास्ति स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है, स्याद वक्त, तो ये तो है तो अकेला लग गया लेकिन नित्य अभिन्न ये अकेले नहीं लगते। एक है ना, अब दूसरी बात समझना कि ये सात भंग कैसे बनते हैं। तो समन्थ भद्राचार्य ने कई जगह ये सिद्ध किया कि तत्व त्रियात्मक है इसलिए सात भंग बनते हैं। इनमें उनके छंद तस्मात तत्त्वम त्रियात्मकम, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीन स्वरूप तत्व है अपन जिसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। तस्मात तत्त्वम त्रियात्मकम, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि वो घड़ा है ना, घड़ा नष्ट हुआ और कपाल पैदा हुआ और मिट्टी कायम है, अथवा स्वर्ण कायम है, कुंडल नष्ट हुआ, बाजूबंद बने और सोना कायम है। तो कहते हैं कि जब वो बाजूबंद तोड़ के अरे कुंडल बनाए तो जिसे बाजूबंद प्रिय थे उन्हें शोक हुआ, जिसे कुंडल प्रिय थे उन्हें हर्ष हुआ, और जिसे दोनों से राग द्वेष नहीं था उन्हें सोना प्रिय था उसे माध्यस्थ भाव रहा। तो लिखा घट मौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनहा याति सहेतुकम। तो तत्व त्रियात्मक है, तीन बातें हैं तत्व में, और जिन बातों में तीन होंगी उनके भंग सात बनेंगे। कि कैसे बनेंगे सात भंग, देखो कि हर बहेरा और आंवला ये तीन चीजें हैं ना, और इन तीन के हमें चूर्ण बनाना है तो कितने चूर्ण बनेंगे? तो एक तो ऐसा कि तीनों के अलग अलग बना दो, हर को अकेला पीस दो, बहेरे का अलग, आंवले को अलग, तीन तो ये बन गए अकेले अकेले। अब दुसंयोगी बनाओ कि दो दो को मिलाओ तो तीन भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? कि हर और बहेरा का एक, बहेरा और आंवला का एक, और हर और आंवला का एक, तीन हो गए ना, तो तीनों तीन छह बन गए। द्विसंयोगी भंग तीन बनेंगे, और एक त्रिसंयोगी, तीनों को मिला दो तो सात भंग बन गए। तो हल बहेरा आंवला में तीन पदार्थों से सात प्रकार के चूर्ण बन सकते हैं, इसे सप्तभंगी कहलाते हैं। अनंत भंगी भी होती है, क्या कि मात्रा कम ज्यादा कर दो हल बहेरा आंवले की तो हजारों चूर्ण बन जाएंगे, लेकिन मात्रा कम ज्यादा नहीं करो, मात्रा बराबर बराबर रखो तो सात ही भंग बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो वस्तु में त्रियात्मक पना है, जैसे अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति, ये तीन पना है ना, तो सात भंग बन जाएंगे वो कह रहे। अब एक बात और एक दूसरी तरीकी और है इसमें समझने की, कि सबसे पहला एक भंग मूल हम ऐसा उठाएं कि ये वस्तु कैसी है, ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात तो ये करो, क्योंकि यदि कहा ही नहीं जा सकता हो तो फिर बात ही खत्म है। ये स्याद बाद है, बाद माने कथन, तो ये भंग कथन करने की शैली के हैं। तो अगर तुम कह रहे हो बाद बाद, तो बाद माने कथन करो, तो पहले को कह सकते कि नहीं, कि हम वस्तु का स्वरूप है इसे हम बता सकते कि नहीं, कह सकते कि नहीं, यानी वक्तव्य है कि अवक्तव्य है। तो अपने यहां तो कहते हैं इसमें भी सात बात है, कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य, कि कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि हूबहू नहीं कह सकते हैं और बिल्कुल ही नहीं कह सकते हो सो बात भी नहीं है। जैसे कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पेट में बहुत दर्द है, कभी कैसा है कितना है, कि बहुत, मैं कह नहीं सकता। तो कह रहे ना कि अभी वो जो जैसा है और जितना है वो मेरे कहने में नहीं आ रहा, इसलिए मैं कहता हूं कह नहीं सकता हूं, और इतना तो कह ही रहा हूं कि इतना दर्द है कि कह नहीं सकता। तो इन शब्दों से तो कह दिया। तो डॉक्टर ने एक सुई ली तो उंगली में चुभाई और बोले कितना दर्द है, कि बहुत दर्द है। तो और जोर से चुभाई कि कितना दर्द है, कि बहुत दर्द है। अब बोलोगे उस सुई चुभाने से लेकर और उंगली काट देने तक दर्द की मात्रा तो बहुत बढ़ती जाएगी, कहा जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कह, इतना दर्द है कि कह नहीं सकता। और कह रहे हैं ना कि दर्द है और बहुत दर्द है, तो कुछ ना कुछ तो भाव इससे व्यक्त हो रहा है ना, इसलिए वो वक्तव्य है। इसलिए कहते हैं वस्तु कथनचित वक्तव्य है और कथनचित अवक्तव्य है। हम किसी अपेक्षा कह सकते हैं, किसी अपेक्षा नहीं कह सकते हैं। अब जो अपेक्षा अपन ने स्पष्ट की, तो अब कहते हैं वक्तव्य है, यदि कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं? तो तीन बातें कह सकते हैं, कि है कि नहीं है, कि है व नहीं है दोनों है, कि नित्य है कि अनित्य है, कि नित्यानित्य है, यही तो कह सकते हैं, भिन्न है कि अभिन्न है, कि भिन्ना भिन्न है, तो तीन बातें कह सकते हैं। इसलिए वक्तव्य के बोल हुए तीन, ये तीन बोल वक्तव्य के हैं। और कहते क्या नहीं कह सकते हैं, तो एक तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं, तो एक हो गया अवक्तव्य का ही चौथा। और फिर कहते हैं अस्ति नहीं कह सकते हैं, नास्ति नहीं कह सकते हैं, कि अस्ति नास्ति दोनों नहीं कह सकते हैं। तो अवक्तव्य के हो जाएंगे चार और वक्तव्य के होंगे तीन, और अवक्तव्य के साथ लगा होगा अवक्तव्य शब्द, और वक्तव्य के साथ नहीं लगता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं, ये कहने की क्या जरूरत है, कह दो ना, यदि नहीं कहना हो तो कहो कि मैं नहीं कहूंगा तुमसे कुछ है? मैंने आपसे कहा कि दो दो कितने होते हैं, तो आपको मैं कहता हूं कि चार, तो मैं कहता हूं ये क्या जरूरत है, ऐसा बोलो चार। यदि जवाब नहीं देना हो तो कह दो साहब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कि मैं कह नहीं सकता। तो कह नहीं सकने के लिए तो कहना पड़ेगा, लेकिन यदि बताना हो, उत्तर देना हो, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں. اس لیے سیاد استی سیاد ناستی اور سیاد استی ناستی یہ تین وکتب کے بھنگ ہیں نا, ان میں وکتب نہیں لگا ہے, لیکن چار اوکتب کے بھنگ ہیں. سیاد اوکتب, سیاد استی اوکتب, سیاد ناستی اوکتب اور سیاد استی ناستی اوکتب. اس لیے اوکتب والوں میں چار دفعہ اوکتب لگا ہے اور تین وکتب والوں میں وکتب شبد نہیں لگا ہے. اس میں تھوڑی اسٹائل میں فرق ہے جو اپن نے ابھی پڑھا ہے. کیا انتر ہے کہ پہلا ہے استی سیاد استی, دوسرا ہے ناستی اور تیسرا ہے اوکتب, اور چوتھا ہے استی ناستی, اور پانچواں ہے استی اوکتب, چھٹواں ہے ناستی اوکتب, اور ساتواں ہے استی ناستی اوکتب. اس میں کرم میں ایک ہے. اور دوسری جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا. اب ان کا تھوڑا سروپ سمجھ لیں, زیادہ وستار کی تو میں میرے پاس سمے نہیں ہے آپ کو بتانے کا, لیکن تھوڑا سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ اب اپیکشا اس میں کیسی لگائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ بنا اپیکشا کے تو نئے متھیا ہے, نرپیکشا نیا متھیا ساپیکشا وستو تیرتھ کرت, کہ نرپیکش نئے متھیا ہیں اور ساپیکش نئے وستو کی سدھی کرتے ہیں. ابھی اپنے بیچ میں ایک دھارا چلی تھی اور وہ ایسی کہ نئے لگا دینے سے اپیکشا لگا دینے سے بات ڈھیلی پڑ جاتی ہے. ارے بھائی گجب کرتے ہو. جین درشن کے علاوہ دنیا کے کسی درشن میں نئے اور اپیکشا نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ جین درشن کی ادبھت ندھی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. کون نئے پرکرن. اور جینیا نیائے شاستر کے جتنے ودوان ہیں اکلنگ آدی سب اس آدیوپانت اس پوری شکتی سے یہ سدھ کرنے میں لگے رہے سارے جیون بھر, کیونکہ سامنے والا تو نئے کو مانتا ہی نہیں نا. کبھی نئے کے بنا وستو کی سدھی ہو ہی نہیں سکتی. نئے کے بنا ایک واک بولنا بھی کٹھن ہے. جناگم کا کہا ہوا ایک بھی واک نئےوں کے بنا نہیں کہا گیا. نئے نئے پرمان کے بنا نہیں کہا گیا ہے. لکھا گیا نہیں لکھا بھی تو یہ سدھ کرتے رہے کہ نئے کے بنا جو بات کرو گے تو متھیا ہوگی, اپیکشا لگا کے بنا بات کرو گے تو متھیا ہوگی, نرپیکش نئے متھیا ہیں اور ساپیکش وستو دیتے ہیں. اور تم کہتے ہو اپیکشا لگانے سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور اب بنا اپیکشا کے مضبوط رہتی ہے, بنا اپیکشا کے ایکانت رہتا ہے جسے تم مضبوط کہتے ہو. انہیں لکھا نا وہ تو ایوکار میں جو بس ہے, بنا اپیکشا میں جو ایوکار ہے وہ زہریلا ہے. کہ آتما نتیہ ہی ہے, اپیکشا نہیں لگاؤ تو یہ زہریلا ہے. آتاری کہتے ہیں لکھا نا اس میں سنسار میں زہریلا ہے. تو وہ کہتے اپیکشا بتاؤ اس میں کہ وستو ہے تو کس اپیکشا سے ہے. تو کہ سوچ تشت کی اپیکشا سے ہے. سدیو سروم کونے چھیت سروپادی چتشتیات. اب ہم تو پہلے دفعہ پڑھاتے ہیں, ہم نے ہر ودیارتھیوں کو یاد ہے. دیکھو ایک پنکتی بولی تو سب بولنے لگ گئے. سن کمار جی سدیو سروم کونے چھیت. کون ایسا مورکھ ہوگا کہ وستو کو سد نہیں مانے گا سروپ چتشت کی اپیکشا سے, سدرب سوچھیتر سوکال اور سوبھاو کی اپیکشا سے وستو کو ست نہیں مانے گا. ایسا کون مورکھ ہے اس جگت میں. ایسا ایسا پرشن ہے. سمندر بدل گیا. اور پر روپ پر درب پر چھیتر پر کال اور پر بھاو اس کی اپیکشا سے کون اسط سویکار نہیں کرے گا. مانے وہ ست ہے, استی جو بھلا بول ہے وہ سروپ چتشت کی اپیکشا سے ہے, اور جو ناستی والا بول ہے وہ پرروپ چتشت کی اپیکشا سے ہے. اور اوکتب جو ہے دیکھو اس میں سب لکھا ہے, جس کا سروپ اور جو درب کا کتھن کرنے میں جو آپ کو پڑھایا تھا نا ابھی, جو سروپ سے ست ہے نا, پھر جو پرروپ سے اسط ہے وہ پرروپ مانے پر چتشت ہے, جس کا سروپ اور پرروپ سے یگپت کتھن اسکت ہے. یہ اے اوکتبھ ہے. کہ تم سے ہے کہ نہیں ہے ایک بات بولو, ایک بات بولو ایک ساتھ. تو ہے تو دونوں ہی باتیں اس میں, لیکن دونوں ایک ساتھ کیسے بولیں. جب ہے بولیں گے جب نہیں نہیں نکلے گا, جب نہیں بولیں گے جب ہے نہیں نکلے گا. وہ کہتا تم سے ایک ساتھ بتاؤ کہ کیسا ہے. تو پھر ایک ساتھ یہ دونوں دھرموں کو کہنا سمبھو نہیں ہے. वस्तु में दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, वस्तु में दोनों धर्मों को एक साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ काय में है? तकलीफ कहने में है, इसलिए क्रम कहने में पड़ता है। तो वक्तव्य और अवक्तव्य नाम का बोल तो कहने में पड़ेगा। और जो 47 नए बताए ना प्रतिसार के अंत में, जिनकी अपन चर्चा करेंगे, तो वहां भी सप्तभंगी का प्रकरण है। तो वहां पर जो अवक्तव्य धर्म बताया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बात ऐसी कि हम कह नहीं सकते, तो आत्मा में तो कुछ है नहीं। तो कहते कि नहीं, आत्मा में एक अवक्तव्य नाम का धर्म है, और जिस नय को ये अवक्तव्य नाम का नय उसको विषय बनाता है उस धर्म को, वहां सिद्ध करेंगे। है ना, एक अस्थि नाम का धर्म है जिसको अस्थि नाम का नय बनाता है, एक नास्ति नाम का धर्म है, वो वहां पर उसकी चर्चा अपन वहीं करेंगे। अभी तो यहां ये बात कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ कहना संभव नहीं है। तो इसमें एक साथ कहना संभव नहीं है माने कहना संभव नहीं है, ये बात तो नहीं रही ना। एक साथ कहना संभव नहीं है, ये बात रही। तो इसलिए कहते तीसरा बोल हो गया अवक्तव्य का। अब चौथा तो कहते हैं वो है जो स्वरूप से और पररूप से क्रमशः सत और असत है। कि स्वरूप से सत, पररूप से सत, तो क्रम से तो कह ही सकते हैं, इसलिए वो चौथा बोल हुआ जो अस्ति नास्ति वाला। अब पांचवा, अब देखिए जो स्वरूप से और स्वरूप पर रूप से युगपत, तो स्वरूप से सत और स्वरूप पर रूप से युगपत अवक्तव्य। तो ये दोनों लगाए ना, सत और अवक्तव्य, तो इसमें दोनों अपेक्षा लगा दी, स्वरूप से सत और स्वरूप पर रूप से युगपत बोलना असंभव, इसलिए अवक्तव्य। तो उसका नाम हो गया अस्ति अवक्तव्य। ऐसा नहीं कि अस्ति कहना संभव नहीं है, तो दोनों का मिक्सर है ना। जैसे सत और असत का मिला हुआ बोल सत और असत वाला है, ऐसे ही सत और अवक्तव्य का मिला हुआ बोल सत अवक्तव्य है, अस्ति अवक्तव्य है। और नास्त असत और अवक्तव्य का मिला हुआ बोल अस्ति नास्ति अवक्तव्य है, और अस्ति नास्ति इसका और अवक्तव्य इसका मिला हुआ बोल अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। ऐसे सात तरीके से वस्तु का स्वरूप लगाया जाता है। अब ये तो अपन ने अस्ति पे लगाई, मैंने है पे लगाई, अब नित्य है पे लगा लो, नित्य ऐसे नित्य आएगा, अनित्य आएगा, एक अनेक पे लगा लो, भिन्न भिन्न पे लगा लो, ऐसे जितने भी जोड़े हैं उन सब जोड़ों पे लगेगा, लेकिन ये सब जोड़ों पे ही लगेगा। और जोड़े ज्यादातर धर्म में होते हैं, गुणों में जोड़े, गुण जोड़े से नहीं होते, धर्म जोड़े से होते हैं। कौन अस्ति नास्ति, एक अनेक, भिन्न अभिन्न, आप समझे ना, नित्य अनित्य, इन पे इनमें शब्दभंगी का प्रयोग होता है, ख्याल में है ना। अब देखिए अगला पेज निकालिए, बहुत मार्मिक बात है, 338 पेज पे दूसरी पंक्ति टीका की। अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया का फल हैं, इसलिए उनका अन्यत्व प्रकाशित करते हैं। क्या बता रहे हैं? देखो इसमें मैं मर्म की बात क्या है कि जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण बनाया गया है। क्या इसका क्या अर्थ है? महेंद्र, वो जो अपन लगे पज्जय मूढ़ा ही परसमया, तो वहां समझाते हुए असमान जाति द्रव्य पर्यायों को उदाहरण बनाया था, उन पर वजन दिया था ना कि मैं मनुष्य देव नारकी त्रेंच ये नहीं हूं। तो अपने कहा वो गुण पर्याय सम्मद असम केवल ज्ञान, उनको क्यों नहीं लिया था? तो वो कहते हैं देखो जिस, क्योंकि नक्की हमें ये करना है कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं, जिसका निर्धार करना है वो इसलिए जिसको उदाहरण बनाया है। ऐसे उदाहरण वैसे ही नहीं बना दिया, यानी हमारी 99.9% समस्या देहादिक में एकत्व बुद्धि की है। क्यों मैं पंडित हूं, मैं हुकुमचंद हूं, मैं मनुष्य हूं, क्यों मैं जैनी हूं, ये समस्या है हमारी कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं सम्यक दर्शन हूं और मैं केवल ज्ञान हूं। बोलो ऐसा मानने वाला हिंदुस्तान में जैनियों में जाओ कोई कौन कितने मिलेंगे? ऐसे तो मिलेंगे लाखों, हमें कहां सम्मान, हमें तो सम्मान है ही नहीं। माने समय दर्शन तो हमें है ही नहीं, ऐसे तो मिलेंगे के साथ ऐसे भी एकाध तो मिल ही जाएगा कि मैं समय दृष्टि हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मैं समय दर्शन हूं, वो भी ये कहेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। इसका तो मतलब समय दर्शन मुझे है, मैं समय दर्शन हूं, ये कहां आया? तो समय दर्शन में एकत्व बुद्धि वाले कहां हैं, बोलो ख्याल में आए ना मेरा? तो मैं केवल ज्ञान हूं, ऐसा कोई कहता है? कहे तो कहते मैं केवल ज्ञान स्वभाव ही हूं, तो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे कि मैं केवल ओनली मात्र ज्ञान स्वभावी हूं, राग स्वभावी नहीं, जड़ स्वभावी नहीं। ये इसका तो ऐसा अर्थ है क्या क्या तो केवल माने जो सर्व सर्व पर्यायों को जानने वाला जो केवल ज्ञान है उसकी बात नहीं है और राग का निषेध है तो वितरागता की बात नहीं है। राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने ज्ञान स्वभावी हूं, राग तो विभाव है ना, स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी बात है। तो इसलिए कहते हैं समस्या हमारी ये मनुष्यादी पर्यायों की है, इसीलिए उसे उदाहरण बनाया गया है। लेकिन ज्ञान जगन्मल जी है ना, आपकी किताब में है कि नहीं है ना? क्या लिखा? अब जिसका निर्धार करना है, संस्कृत में है देखो, अथ निर्धार्यमाणत्वेन उदाहरणीकृतस्य, निर्धार्यमाणेनत्वेन, निर्धार्यमाण होने से, निर्धारण करना हेतु है ना, होने से जिसे उदाहरण किया गया है, उदाहरण के रूप में जिसका प्रयोग किया है, तो उसके बारे में हमें पक्का निर्णय करना है। इसके लिए भाई साहब देखो, ऐसा तो आपको बहुत मिलेंगे, ना हम देहो ना हम, ऐसा आता क्या नहीं आता है? लेकिन ऐसा नहीं लगा ना हम केवल ज्ञान हो ना हम सम्मा दर्शन हो, ऐसा तो ऐसे ही कहना चाहते हो तुम सम्मा दर्शन में अहम बुद्धि प्राप्त करो। मैं तो कहता हूं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम बुद्धि करने का नाम सम्मा दर्शन है। यदि सम्मा दर्शन में होता तो फिर सम्मा दर्शन को अनादि से होना चाहिए था, और नहीं तरह मैं अनादि से नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहां कहते हैं कि ये समस्या नहीं है, जैसा मनुष्य मैं नहीं हूं ऐसा संबंध दर्शन भी मैं नहीं हूं, ये बात 100% सत्य है, लेकिन इट इज ए नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि कोई मान्यता ही नहीं है ऐसा। समस्या तो देहादिक में एकत्व बुद्धि की है ना, तो कहते जिसका लिखा ना क्या, जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण स्वरूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया का फल है। क्रिया का फल है माने क्या, कि उसने भगवान आत्मा की आराधना नहीं की, इसलिए ये उत्पन्न हुई हैं। इसलिए कर्म बना तो मनुष्य गति नाम कर्म बना, मनुष्य आयु बंधी और मनुष्य आयु से मनुष्य पर्याय मिली, ऐसा सब बताएंगे आगे, सब इसमें लिखा है, मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगा। देखो आगे देखता हूं, देखा पेज नंबर 241 निकालो, अब घर पे पूरा पढ़ लेना, मैं भी घर पे पढ़ के आता हूं, बाद में भी जाके पढ़ता हूं, जो विषय बोल चुका उसे भी पढ़ता हूं, ये जानने के लिए कि मैं गलत तो नहीं बोल गया कुछ, और फिर वो पढ़ता हूं, पर यदि मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई तो फिर दूसरे दिन में उसको बोलता हूं। क्या देखो क्या लिखा, ये पर्याय नीचे से भावार्थ, पेज नंबर 240 के नीचे की भावार्थ, चैतन्य परिणति वह आत्मा की क्रिया है। देखो है ना, मोह रहित क्रिया मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती है, है? मोह सहित भाव एक प्रकार के नहीं होते हैं, इसलिए उनके फल रूप मनुष्यादि पर्याय भी तंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप नहीं होती, कभी मनुष्य कभी देव कभी नार की ऐसी पर्याय होती है, और कभी मनुष्य में ही भेद कर दो, कभी बालक कभी बुढ़ापा कभी जवानी कभी बीमार कभी स्वस्थ, तो ये ऐसा क्यों है, फर्क क्यों आया? तो कहते हैं कि मोह से जो क्रिया होती है जीव की वो भी एक सी नहीं होती, राग भी एक सा नहीं होता, देश भी एक सा नहीं होता, मिथ्यात्व भी एक सा नहीं होता, वो निरंतर उतार चढ़ाव होता होता, तारतम 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 बना रहता, अभी हर किसी से राग है फिर देश हो जाता है, कम राग हो जाता है ज्यादा राग हो जाता, उसमें भी तारतम्य बना ही रहता है। तो वितरागी क्रिया तो एक सी होती है अनंत काल तक, इसलिए सिद्ध पर्याय तो अनंत काल तक एक सी रहती है, उसका फल तो सिद्ध पर्याय है ना वितरागी क्रिया का,
और ये जो मोह की क्रिया है जीव की, वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य आदि पर्यायों में विविधता देखी जाती है, वो तेरे भावों की विविधता का परिणाम है। क्या कह रहे जीव से कि तेरी जो मोह की क्रिया है जिनकी वजह से इनका संयोग हुआ है उसमें भी इतनी प्रकार की विविधता थी इसलिए ऐसा हुआ। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि भाई साहब ये जो एकदम बाढ़ आई और इतने लोग एक साथ मारे गए तो इतने लोगों ने एक साथ पाप किया होगा क्या, एक से ही पाप उनका उदय आया था क्या, ये तो प्रकृति जन्म है इसमें तुम्हारा कर्म वर्म कहां आता है। अरे भाई ऐसा हो सकता है, कौन से गजब की बात है, हमारे भाव एक से होते हैं क्या। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फटकार सुना दी तो हम सारे हिंदुस्तानी एक साथ खुश हुए क्या, नहीं तो सबने एक सही पुण्य पाप बांधा होगा कि नहीं बांधा होगा, उसका फल एक साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमको तो सारी जिंदगी में एकाध दफे ऐसा देखने में लगता है कि तो बाढ़ आ गई तो लाखों लोग एक साथ मर गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है भाई साहब आप रोज ही नहीं बाढ़ ला रहे हो, ऊपर को मुंह करके चाय जहां पेशाब करने बैठ जाते हो और वहां वाले चींटियों की लेन जा रही हो तो उनके लिए तो गंगा जी में बाढ़ आ गई। लाखों जीव एक साथ मरते नहीं देख जाते निगोद में। आपने आलू जमीकंद खाए और उसे चाय जैसा उबालना शुरू कर दिया क्यों, तो लाखों जीव एक साथ उबले के नहीं उबले। ये कोई ये, तुम दो चार वर्ष की एक घटना पर बात करते हो, ऐसी घटनाएं रोजाना हो रही हैं और रोजाना ही एक से पचासों बातों में एक से भाव हो रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारी क्रिया का फल है, ये बता रहे हैं कि जो मनुष्यादि पर्यायों में जो एक रूपता नहीं है, जो निरंतर परिवर्तन अलग अलग पना देखने में आता है, वो पर्याय तेरी क्रिया का फल है। देखो अब आगे जो गाथा है ना वो बहुत अच्छी है, उसका उसकी टीका पढ़ते हैं। क्रिया वास्तव में आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से कर्म है, अर्थात क्रिया को आत्मा प्राप्त करता है पहुंचता है, इसलिए वास्तव में क्रिया आत्मा का कर्म है। उसके निमित्त से परिणमन को प्राप्त होता हुआ, मानो क्रिया माने मोहराग देश रूप भाव की बात है, द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करता हुआ पुद्गल भी कर्म है। वो क्या कहते हैं कि पुद्गल जो गाना बना दिए इनका कर्म नाम क्यों पड़ा, इनका कर्म नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो कि तेरा जो राग द्वेष मोह है ना वो उनमें निमित्त बना है उनके बंधन में, और चूंकि ये तेरा कर्म है इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया कर्म, तेरे अपराध के फल में उसका नाम कर्म पड़ा है। वो काय को कर्म है, वो तो पुद्गल है, वो तो कर्म के उदय से जो हमारे मोह राग देश के भाव होते हैं इसलिए वे भाव कर्म कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि तूने जो राग देश किए थे वो है कर्म तेरे, कर्म माने तेरे कार्य हैं, ज्ञान भी तेरा कर्म है और राग भी तेरा कर्म है। देखो यहां राग का कर्ता भगवान आत्मा को बता के बात कर रहे हैं, अब यहां समय सा याद नहीं करना। कौन सा कर्म है, जिन कर्म से मनुष्यादि गति का बंद हुआ था वे कर्म तेरे कर्म हैं। आगे बात करेंगे कर्म फल चेतना राग चेतना सबकी बात, तो उनके कारण क्योंकि वो निमित्त थे और इससे जो ज्ञान वर्णादि रूप कर्मण वर्णा परिणमित हुई इसलिए इनका नाम पड़ गया कर्म, और उनका कच्चा मटेरियल होने से उस पुद्गल की उस बरगणा का नाम पड़ गया कर्मण बरगणा। समझे उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय हैं, मनुष्यादि पर्याय माने नो कर्म। तो ये जो उसकी वो ज्ञान वर्णादि कर्म बांधे थे पुद्गल कर्म उसके उदय में जो मिली हैं, मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया तो उसके कहते हैं मूल कारणभूत तो जीव ने जो कर्म किया था वो था, तो कहते हैं जो मनुष्यादि पर्याय गति में तू गया है वो तेरी क्रिया का फल है। ये कहना चाहते हैं कि तुझे किसी ने नरक में नहीं भेजा तो तुझे कोई स्वर्ग में नहीं भेजेगा, तेरे ही कर्म के अनुसार तू नरक स्वर्ग में जाता है, तो ये मनुष्यादि पर्याय तेरे क्रिया का फल हैं। माने तूने इनडायरेक्ट तो तू उसका करता, देखो वो इनडायरेक्ट तो वो सद्भूत व्यवहार ने खड़ा किया, कौन तू राग का करता है और फिर कहते उनसे जो ये मनुष्यादि पर्याय मिली, तो मनुष्यादि पर्याय ये क्या हुआ, असद्भूत व्यवहार ने, जिनको अपना कहते हैं ना तेरी है, ये कह रहे हैं तेरे कर्म का फल इसलिए तेरी है। अब उसमें मनुष्य के अपने शरीर को लो तो अनुपचार असद्भूत हो जाएगा, और स्त्री पुत्रादि संयोग मकान जायदाद को लो तो उपचरित हो जाएगा, हो जाएगा ना समझ सब। तो ये सब व्यवहार में खड़े कर रहे चले यहाँ इस संसार में, और फिर ये कहेंगे कि ये तेरी नहीं है, तो फिर वो सारे व्यवहार नयों का निषेध हो गया। इसका नाम है व्यवहार नये झूठे हैं, कि जितनी ये तेरी हैं ये अपेक्षा बता दी, और उसको उसका नाम जिनवाणी में व्यवहार नये है, और ये तेरी वास्तव में नहीं है ये निश्चय नये की अपेक्षा से उस व्यवहार नये का निषेध है। देखो 242 पेज पर तीसरी लाइन से पढ़ते हैं अपन, मैं सब निशान लगा लगा के लाया हूं आपके लिए, मेहनत करके आया हूं। देखो बे मनुष्यादि पर्याय कर्म के कार्य कैसे हैं, तो कहते हैं कि बे कर्म के कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करने से की जाती हैं, इसलिए दीपक की भांति। ये क्या चक्कर है, देखो कहते वो जो पर्याय पैदा हुई मनुष्य आदि, तो कर्म के स्वभाव ने जीव के स्वभाव को हरा दिया, तो हुई कर्म के स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव के पराभव के कारण पैदा हुई है। वो अपने कलश है ना, कर्म स्वभाव ने जीव का, अपने अपना हिंदी में पद्यानुवाद किया, किसी ने याद किए हो तो वो सुनाए, अन्ना जी को सुना ना। देखो देखे दीपक की भांति, अबे दीपक की भांति क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है दीपक का, और आगे एक उदाहरण और भी है इसमें। दीपक की भांति देखो क्या है, जैसे ज्योति मन लो, दीपक की लो के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक की ज्योति का कार्य है, उसी प्रकार कर्म के स्वभाव द्वारा जीव के स्वभाव का प्रभाव करके की जाने वाली मनुष्यदारी पर्यायों के कार्य है। क्या समझ में आया, नहीं आया। कहते जो लो है ना, लो दीपक माने लो, असली दीपक उस सकोरे का नाम नहीं है, दीपक तेल का नाम नहीं है, दीपक बाती का नाम नहीं है, दीपक काय का नाम है, वो लो का नाम है, और उसकी वजह से सारे उस परिकर को दीपक कह देते हैं। कहते वो दीपक ने माने लो ने जो उजेला करने का काम किया है, तो वो खुद ने कुछ नहीं किया, तेल की सत्ता का नाश करके किया है, तेल के स्वभाव का पराभव करके किया है। क्या खुद का कुछ नहीं है क्या, जो तेल का पराभव करके किया है ना, तो कर्म ने जो तुझे मनुष्य आदि पर्याय दी हैं, तेरे आत्मा का पराभव करके दी है, तेल का नाश करके दी है, तेरे आत्मा का सत्ता नाश करके तेरे को ये मनुष्य आदि पर्याय तेरे को मिली है। कि सब कर्म ने दी, कर्म का फल है, कर्म ने दी, तो हे कर्म देवता, हे कर्म देवता, ये कर्म को देवता काय को मानता है, कि सब उनने दिया है ना, उनने दिया है ना। क्या समझ में आया, समझ ना, कि किसी को जरूरत थी तो किसी ने 1,00,000 रुपया उसे सहायता करने के लिए दिए, तो वो कहते हमें आपका उपकार मानता हूं, आपका उपकार, काय को उपकार, उपकार मानता है, कि तेरे पुण्य का उदय के बिना मैं तेरे को 1 पैसा नहीं दे सकता हूं, वो तो तेरा 1,00,000 रुपए प्राप्त करने का पुण्य था, वो खर्च हो गया, बेटा धोखे में मत रहना। उस लो ने, दीपक ने तेल को खाकर तेल का पराभव करके किया है जो कुछ हुआ है, ऐसे ही कर्म ने आत्मा के स्वभाव का पराभव करके ये मनुष्यादि पर्याय उनके निमित्त से तेरे को मिली है। देखो अब अगली टीका 243 पेज पर देखो कि पराभव कैसे किया, वो सब बात बता रहे, पराभव का मतलब क्या है, कैसे किया, कि यह मनुष्यादि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है, इन नाम कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्याय मिलती ना, अपने शास्त्र में आता है, किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है, जैसे कनक बद्ध माणिक वाले कंकड़ों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, तदनुसार जो वहां जीव के स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता, सो तो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है, पानी के पूर की भांति। क्या क्या बहुत बहुत अच्छा, जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से
निम्वक चंदनादि बनराजी रूप रूप होता परिणमित होता हुआ परिणमित होता हुआ अपने द्रव्यत्व स्वादित्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और निरुपराग रूप विशुद्ध मतित्व स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। हम क्या कह रहे, दो उदाहरण दे दे, एक तो क्या है माणिक की भांति और एक है दूसरा क्या है पानी के पूर की भांति। क्या कह रहे सुनो, कहते कि वो तो कर्म के संयोग में है तो मेरा आत्मा का स्वभाव पराभव हो गया। कह रहे नहीं 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 नहीं, शरीर के संयोग में आ गया तो आत्मा हार गया। कि नहीं हारा है, क्यों कि माणिक को सोने में जड़ दो तो माणिक का पराभव नहीं होता है, सोना भी दिखता रहता है माणिक भी दिखता रहता है। तो ऐसा मनुष्य पर्याय में तेरा भगवान आत्मा माणिक जड़ गया, मनुष्य पर्याय है सोना और तेरा भगवान आत्मा है माणिक, उसने जड़ दिया तो वो तो अलग अलग चमक रहा है, वो ज्ञान तो अलग चमक रहा है ना। तो कहते जैसे सोने में जड़ा हुआ माणिक का पराभव नहीं होता है, तो सोने में जड़ने से जड़ा हुआ हो तो भी पराभव नहीं होता है। तो ऐसे तेरे भगवान आत्मा का मनुष्यादि पर्यायों में रहने से पराभव हुआ है, सो बात नहीं है। तो पराभव का कारण क्या है कि पानी की पूर की भांति हुआ है। कि पानी का पूर क्या, कि पानी जो बिल्कुल निर्मल था हिमालय के वहां से बहा था और बहते बहते वो ऐसे जंगल में से निकला जहां नीम ही नीम के पेड़ थे। क्या समझे ना, लेकिन वृक्षों की राजी लिखा ना, चंदनादि के वन में से निकला अथवा नीम के वन में से निकला। तो चंदनादि के वन में से निकला तो सुगंधित हो गया और नीम के वृक्षों के पास से निकला तो कड़वा हो गया। तो पानी का जो मूल गंध भी नहीं रही और मूल स्वाद भी नहीं रहा। तो पानी का जो पराभव हुआ क्योंकि उसका मूल स्वभाव त्रोहित हो गया ना, वो तो चंदनादि और नीम के संयोग में से निकला, उसमें से हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि तेरा आत्मनुष्य पर्याय में जड़ जाने से नहीं हुआ पराभव, तू मोहराग देश रूप भावों में से निकला इसलिए तेरा पराभव हुआ है, क्योंकि तू संयोग पर अपराध नहीं मर दे। लिखा ना, फिर पढ़ता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। सभी जीव के स्वभाव का पराभव निकाल, यह मनुष्यादि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। मिल गया, जैसे कनकबद्ध सोने में जड़े हुए माणिक वाले कंकड़ों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, तदनुसार ठीक है जो वहां जीव के स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है, माने आत्मा का अनुभव नहीं करता है, सो तो सुकर्म रूप परिणमित होने से, माने वो भाव कर्म रूप परिणमित हुआ ना, स्वकर्म अपना निज का कर्म था जिसकी वजह से ज्ञानावरण आदि को कर्म नाम पड़ा। पानी के पूर की भांति, जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदनादि बनराजी रूप नीम चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित होता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादित्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। यह तो ऐसा कह रहे कि वो नीम में ही चढ़ गया पानी और चंदन के वृक्ष में चढ़ गया, माने बह गया आगे वहां से निकलते हुए नहीं, नीम में भी पानी पना तो है ना, गीलापन निकलता है ना। अब फिर उसमें से जो अपन निकालें नीम की पत्तियों का रस निकालें, नीम के तने में से रस निकालें, चंदन का रस निकालें, तो उसने दो चीजें खोई कि एक तो अपना स्वाद खोया, अपनी गंध खोई और अपना प्रवाही स्वभाव खोया। प्रवाही समझे, बहने का स्वभाव खोया। क्योंकि वृक्ष बन गया तो वहीं रह गया, तो बहना बंद हो गया। जितना वृक्ष ने सोख लिया पानी को तो पानी का प्रवाही स्वभाव भी खत्म हो गया। तो ऐसे तेरे भाव कर्म के वजह से सारा गड़बड़ी हुई है, देखो हुआ ना। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और अमूर्तत्व का मूर्ति हो गया, पूर्ति शरीर के साथ में निरुपराग विशुद्ध मतित्व स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है। ये तेरी गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी का कारण है। क्या कह रहे हैं, ये प्रवचन सार की शैली देखो, भाव कर्म का करता और द्रव कर्म का भी और उसके शरीरादिक के मनुष्यादिक का, क्योंकि यदि सबके ही अकर्ता है तो वह संसार ही नहीं होने चाहिए था, और फिर ऐसे तो अन्याय हो जाता ना। ऐसा अकर्ता तो संख मानते हैं। क्यों, कल मैं समय सार पढ़ता था
निकाल के मैंने दादा को और अनुभव वगैरह को बताया भी, जयसेनाचार्य ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। गाथाएं तो वो चल रही हैं, कौन सी सीढ़िया वाली, फेटका वाली, उन्होंने उसमें प्रश्नोत्तर किए हैं। अब प्रश्नोत्तर में किंच कह करके और एक बात डाली, तो उसमें लिखा आत्मा पर को व्यवहार से जानता है ना, इसकी चर्चा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये सिद्ध किया, तो ये बताया कि ऐसी मान्यता तो कि पर को जानता ही नहीं है, ऐसी मान्यता तो बौद्धों की है, उसने ये सिद्ध किया। पढ़ना ऐसी मान्यता, मैंने उसको अनुवाद करके अभी दिया है वितरा विज्ञान में, आप उसमें पढ़ना कि ये मान्यता तो बौद्धों की है, और ऐसा तुम कह के बौद्ध मत को ग्रहण कर रहे हो, ये सिद्ध किया है उसमें। विस्तार से भी समझ नहीं पड़ता।